पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।
ओम शांति। अभी अभी जो गीत हम सुन रहे थे वो हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के लक्ष्य को, हमारे यहाँ की शिक्षाओं को और हमारी धारणाओं को बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सबके सामने रखता है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि एक ये गीत और एक दूसरा जो गीत है कि राजयोगी बनो, और तीसरा बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे, और फिर बाबा तूने कमाल कर दिया। अगर ये चार गीत हम रोज सुन लिया करें तो फिर मैं समझता हूं कि माया हमेशा के लिए भाग जाएगी। अगर योग युक्त अवस्था में साइलेंस में पूरा ध्यान देकर बात को समझते हुए कि क्या कहा जा रहा है, एक एक शब्द पर कामा फुल स्टॉप पर ध्यान दें हम, तो मैं समझता हूं कि ये सारी इन चार गीतों को मिलाकर यही हमारी सच्ची गीता है, क्योंकि इससे इतनी प्रेरणा मिलती है हमारे अपने जीवन को किस राह पर हमने चलाना है, हमारा मार्ग हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है, कोई भी बात बाकी रह नहीं जाती। तो आप देखेंगे कि जब कोई हमसे पूछता है कि आपके इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है, या हमने लोगों को जब संक्षेप में कोई संदेश देना होता है, तो हमारा जो मुख्य मोटो है, जो हमारा मुख्य स्लोगन है, एक जो सबसे बड़ा हमारा नीति वचन या हमारा इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का एक मुख्य बात जो है, नारा हमारा, तो हम लोगों को दो चार शब्दों में ही कहते हैं कि पवित्र बनो और योगी बनो। ये हमारे सारे ज्ञान का सार है, ये हमारे ज्ञान की फाउंडेशन है, हमारा इंस्टीट्यूशन इसी नीम पर खड़ा है। ये क्या विशेष कार्य कर रहा है इस संसार में, जो बहुत से लोग पूछते हैं कि इस संस्था की क्या आवश्यकता थी, आप लोग क्या कार्य करते हैं, तो हम संक्षेप में सबको क्या कहते हैं कि पवित्र बनो और योगी बनो। और ये जो चारों गीत हैं, ये हमारे इस स्लोगन के समझो के उसको स्पष्ट करते हैं कि पवित्र बनो का क्या अर्थ है। जैसे अभी कहा जा रहा था कि चरित्रवान ही महान है, और फिर राजयोगी बनो से उससे हमारा ये स्पष्ट हो जाता है कि योग से हमारा क्या अभिप्राय है। तो इतना टाइम तो हर एक के पास रहता ही है, मैं समझता हूं कि इन चार गीतों को अगर एक दफा भी हम दिन में सुन लिया करें, प्रातः विशेष रूप से आप इसको आजमा कर देखें कि बहुत लाभ इससे होगा। ये एक प्रकार से हमारे लिए टॉनिक है, भोजन है हमारा विशेष, हमारे हम आत्माओं की कमजोरियों को दूर करने के लिए। तो हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जब आए, कोई भी किसी की भी जीवन कहानी को आप सुन लें, तो बाकी बातें तो मैं समझता हूं जो हम सुनते हैं कहते हैं वो विस्तार और प्रसार है, प्रसार माना प्रचार है, लेकिन सार उसका यही है। हम तीन चीजों में लगे हुए हैं, एक सार को ग्रहण करने में, दूसरा लोगों को विस्तार से समझाने में, और तीसरा उसका प्रसार या प्रचार करने में। अगर सारी दिनचर्या आप देखें, आप स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, जो बाबा की मुरलियां हैं सारी तो आपको याद नहीं रहती, उसमें से जो सार है वो आप ग्रहण कर लेते हैं। जीवन जो हमारा ढल रहा है, वो जो सारा कुछ हम सुनते हैं, बाप दादा हमें नित्य प्रति बताते हैं, उसका सार हम धारण कर लेते हैं। लेकिन लोग चूंकि उस बात को स्पष्ट तुरंत नहीं मान लेते, इसलिए हम विस्तार से उसको समझाते हैं। संगम युग आ गया है, उसके लिए बताना जरूरी है कि कल 5000 वर्ष का है, लोग उसको मानते नहीं, तो हमें बताना पड़ता है कि 5000 वर्ष का कैसे है, करोड़ों और अरबों वर्षों का कैसे नहीं है। लेकिन सार तो उसका यही है कि 5000 वर्ष का है, हमने तो उस सार को ग्रहण कर लिया। वो विस्तार करके हमें प्रसार करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, फैलाव करना पड़ता है, ताकि ब्राह्मण कुल बढ़े, इसकी वृद्धि हो, और भी जो है बाबा के नजदीक आए, योगी और सहयोगी बने। परमात्मा ज्योति बिंदु है, वो सर्वव्यापक नहीं है, ये सार है, बाकी सब उसका विस्तार है, सर्वव्यापक नहीं है। लोग सर्वव्यापक के बारे में जितने प्रश्न पूछते हैं हम उसका उत्तर देते हैं, तो वो विस्तार है, वो विस्तार करना पड़ता है। पहले हमने विस्तार अपने लिए सुना, फिर आप दूसरों को समझाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन बुद्धि में रहता तो सार ही है। तो ये जो सार है, पवित्र बनो और योगी बनो, और इसका भी अगर सार करें तो मैं समझता हूं कि योगी बनो, क्योंकि योगी क्या है जो पवित्र नहीं। राजयोग है हमारा अभ्यास, कोई हठ योग तो है नहीं, और राजयोग में यम नियम तो आवश्यक हैं। जो पवित्र ही नहीं वो योगी कैसे कहा जा सकता है। भोगी और योगी दो अलग कोटियां हैं, अलग श्रेणियां हैं। योगी वो है जो पवित्र है। तो अगर उसका और सार करें तो हम कहेंगे कि हमारे जीवन का जो इस समय सारा पुरुषार्थ है, उसकी जो धुरी है, उसका जो फोकस है, जो हमारा केंद्र बिंदु है, हमारे अटेंशन का जो पूरा एक समझिए कि केंद्र है, जिस पर हमें पूरा जोर लगाने की जरूरत है, वो है योगी बनो। अगर हम योगी नहीं बनते, योगी का ही सारा समझने की जरूरत है कि योगी के क्या लक्षण होते हैं, योगी का जीवन कैसा होता है, योगी का व्यवहार कैसा होता है, उसका आहार कैसा होता है, उसके कर्तव्य कैसे होते हैं, दूसरों के साथ उसकी दृष्टि वृत्ति कैसे होती है, ये सारा योगी का स्पष्टीकरण है। लेकिन फिर भी आके घूम फिर के हम इसी बात पर पहुंचते हैं कि योगी बनो और उसको स्पष्ट करना हो, क्योंकि संसार में लोग वो जटाजूट धारण किए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए, खड़ाओं पहने हुए व्यक्ति को जिसने भस्म रमाई हुए शरीर पर, उसको योगी समझते हैं। इसलिए हमें कहना पड़ता है भाई पवित्र बनो और राजयोगी बनो। योगी शब्द के साथ भी राजयोगी कहना पड़ता है और पवित्र शब्द भी जोड़ना पड़ता है। लेकिन अब तो हम सब समझ गए। संक्षेप में जब आपस में हमारे यहाँ चर्चा होती है तो हम एक शब्द में यही कहेंगे कि योग युक्त कैसे हों, युक्ति युक्त भी कैसे हों। योग युक्त और युक्ति युक्त ये दोनों चीजें थोड़ा थोड़ा अलग है, होना दोनों जरूरत है, योग युक्त भी और युक्ति युक्त भी। अगर योग युक्त हम होते हैं और युक्ति युक्त नहीं होते तो भी हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घटती। किसी से हम बोलते हैं और ठीक ढंग से नहीं बोलते, जैसे इसमें था कि वाणी हमारी मधुर हो, बोले तो सही, वो कहते हैं सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो। तो अगर हम सत्य बोलते हैं योगी होने के नाते, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान पूर्वक और स्नेह पूर्वक नहीं बोलते तो दुर्घटना घट जाती है। समय पर नहीं बोलते, जिसको कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए उसका ध्यान नहीं देते, युक्ति युक्त नहीं हम करते तो भी ठीक नहीं रहता। तो योगी बनना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमने जिस स्टेज को प्राप्त करना है वो भी योग से प्राप्त होगी, और जो हमारे 63 जन्म के किए हुए हिसाब किताब कर्म इत्यादि हैं वो भी योग से ही दग्ध होंगे। जिस स्थिति को प्राप्त हम करना चाहते हैं, जिन दिव्य गुणों का विकास हम चाहते हैं, वो सब योग से ही होगा। बिना योग के अगर हम सिर्फ ज्ञान समझ लें, समझने के बाद अगर हम योग में उसका अनुभव ना करें, उसमें स्थित ना हो, उसका स्वरूप ना बने, तो फिर हमारा जो स्टेज है वो बहुत नीचे की रहेगी। क्योंकि ज्ञान से कुछ तो योग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पूरी रीत से उसको स्टेज में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हम इस विशेष सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दें, बाबा को योगी बच्चे ही प्रिय हैं, और योग पर ही बाबा ने आप हर मुरली में देखेंगे कि ज्यादा हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो इस विषय को जितना हम स्पष्ट रूप से समझेंगे, ध्यान में रखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उतना ही हम रेस में आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मेरा मंतव्य है। बाकी तो सब विस्तार और प्रसार, जैसे मैंने कहा वो है, लेकिन वो भी फलीभूत तभी होगा, सफल तभी होगा जब पहले हम सार में रहेंगे। तो अब उसके विषय में जो मेरे विचार हैं, जो अनुभव हैं बाबा की जो बताई हुई बातों को ध्यान देने के बाद, उसका सार क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, वो मैं आपके सामने रखूं। उसमें आप देखेंगे कि हम जो योग के विषय में कहते हैं बाबा हमें, मुख्य रूप से क्या कहते हैं। एक तो बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस, ये योग है, सोल कॉन्शियसनेस को हम योग कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि योग का जो एक एलिमेंट है, उसका एक जो इंग्रेडिएंट है, एक जो उसका अंश है, समझ लीजिए भाग है, जिससे योग निर्मित होता है, योग बनता है, एक है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना, जिसको हम अपने आम शब्दों में कहते हैं स्मृति, आत्मिक स्मृति, जिसको कई दफा हम कहते हैं कि देही अभिमानी भाव, देह अभिमान नहीं, देही अभिमानी, आत्मा की स्मृति में हम रहें। तो पहली एक चीज ये हो गई, जिसको अगर योग की गहराई में हम जाना चाहते हैं, योगी जीवन हम बनाना चाहते हैं, योग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, तो पहले पहले हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा स्मृति पर, कि हमारी स्मृति किस तरफ लगी हुई है, कहीं भटक तो नहीं गई। जिसमें स्मृति लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि योग के लिए कहा गया आत्मिक स्मृति और शिव बाबा की भी स्मृति, योग स्मृति का नाम है, ये बाबा ने कहा कि योग याद की यात्रा का नाम है, याद की यात्रा। तो याद या स्मृति एक विशेष है, एक तो ये है योग की बात। दूसरा आप देखेंगे कि भाई कई दफा बाबा कहते हैं योग माना संबंध, इसका मतलब यह है कि सिर्फ स्मृति की बात इसमें नहीं, संबंध की भी बात है। हम आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है, जब हमने देह अभिमान को छोड़ दिया, आत्मा की स्मृति में हम स्थित हुए, तो आत्मा के नाते से हमारे शिव बाबा से हमारा पिता कौन है, इसके साथ हमारे संबंध है। ये एक विशेष बात है जो योग की गहराई के लिए, अनुभव करने के लिए हमें ध्यान में लानी पड़ेगी, इसका आगे हम वर्णन करेंगे। और फिर शिव बाबा से अगर हमारा संबंध ये है कि शिव बाबा हमारे पिता हैं, माता हैं, शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, तो बाकी जो आत्मा है उनके भी शिव बाबा के साथ यही संबंध है, तो फिर औरों के साथ हमारे क्या संबंध हुए, भाई भाई के। तो जब हम संबंध की बात करते हैं तो न केवल आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ क्या है, बल्कि इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जब आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ ये है, तो चूंकि और भी आत्मा है हमारे अतिरिक्त, संसार में सब मनुष्य शरीरधारी आत्मा ही तो है, ये ज्ञान हमें मिल चुका, तो वो सब जो है उनका भी संबंध शिव बाबा से क्या है, जैसा हमारा संबंध है वैसा ही संबंध उनका है, तो हमारा उनके साथ क्या संबंध होगा। जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं इफ ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी देन ए इज इक्वल टू सी, अगर ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है तो ए और सी भी आपस में बराबर होंगे, ये मैथमेटिक्स की बात है। तो जब हमारा शिव बाबा के साथ ये संबंध है, दूसरों का भी शिव बाबा के साथ ये संबंध है, तो हमारा आपस में संबंध क्या है, अगर उस संबंध में हम नहीं रहते तो भी हम योग की स्टेज से नीचे गिर जाते। तो ये एक जहां पर स्मृति का ध्यान देने की जरूरत है, ये योग की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तत्व है उसका जिस पर जिससे योग बना है। तो दूसरी बात, योग से हमारा अभिप्राय संबंध है, ये बात हमें ख्याल रखनी चाहिए, रिलेशनशिप। दुनिया में जहां गड़बड़ा है वहां आप देखेंगे संबंधों में बिगड़ा हुआ है, सारी प्रवृत्ति संबंध पर आधारित है। संबंध आपस में खराब होने से संसार में संघर्ष है, सारा लड़ाई झगड़ा मन मुटाव भेद हिंसा और जो कुछ लूट खसूट जो संसार में गड़बड़ हो रही है वो एक इस संबंध के नष्ट होने से हो रही है। और उस संबंध को अब हमने फिर ठीक करना है, उसी का नाम योगी जीवन है। योगी हर एक से कैसे मिलता है, कैसे व्यवहार करता है, क्या उसका दृष्टिकोण होता है, ये जब तक उसकी स्मृति पहले आएगी फिर स्मृति से उसका संबंध उस पर आधारित होगा तब वो योगी बनेगा। अगर इन दोनों में से एक भी चीज का अभाव होगा तो फिर वो योगी नहीं बन सकता। तीसरी चीज आप देखेंगे अटेंशन। योग में हमें मन को एकाग्र करना है, कहते हैं योग जो है कंसेंट्रेशन का नाम है। कंसेंट्रेशन क्या है, कंसेंट्रेशन मैक्सिमम अटेंशन का नाम है। जब आप सब तरफ से अटेंशन हटाकर एक विशेष जगह पर मन को एकाग्र करते हैं, अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं योग जो है वो ध्यान है, ध्यान योग है, क्योंकि आप बाकी तरफ से ध्यान हटाकर वहां से मन को विड्रा करके उस एक जगह पर जब टिकाते हैं तभी उससे हमारा संबंध लिंक जुटता है। आज आपने सुबह देखा कि वो तार जो थी वो ठीक नहीं थी, उसको हर कोई टच करने की कोशिश कर रहा था, उधर भी दबा रहा था इधर भी दबा रहा था, लेकिन वो आवाज तो आती नहीं थी जो ट्रांसलेशन के लिए व्यवस्था थी। तो उसके कारण क्या हुआ, कईयों की अटेंशन उधर चली गई कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो जो अटेंशन हो गई उधर तो आप देखेंगे कि उसका परिणाम ये हुआ होगा कि उस टाइम जो हम सुन रहे थे उतना हिस्सा जरूर मिस हुआ होगा, क्योंकि जो कुछ भी हम अनुभव करना चाहते हैं अनुभव का आधार अटेंशन पर है। आप खाना खा रहे हैं, किसी ने बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ बना रखे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं किसी चिंता में लगा हुआ है कि कोई घटना कहीं घट गई है, आप उस तरफ लगे हुए हैं मन आपका, और भोजन के जो पदार्थ हैं उनकी तरफ ध्यान है ही नहीं, कोई आपसे पूछे कैसा लगा तो आप एक औपचारिक रूप से एक शिष्टाचार के नाते भले कह दें बहुत अच्छा था, लेकिन वास्तव में अगर वो ज्यादा आपसे प्रश्न करे तो आपको पता कुछ भी नहीं कौन सी चीज कैसे बनी थी किस चीज से बनी थी, यू कांट टेल। उसकी वजह यह है कि आपकी जो अटेंशन थी जो मन था वो कहीं और था। तो मन को ही हमने जोड़ना है, आत्मा का जो परमात्मा के साथ संबंध है वो मन का है या बुद्धि का है, बुद्धि योग है ये या मनोयोग है, अटेंशन है उसमें इन्वॉल्व, और अगर हमारी अटेंशन बिखर जाएगी तो समझो कि जो अनुभूति है वो हम नहीं कर पाएंगे। योग है सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। हमने जो अपने ज्ञान में समझा कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, वो आत्मा या ज्योति बिंदु क्या हूं? आत्मा जो ओरिजिनली पवित्र थी या शांत स्वरूप थी, वो पवित्रता या शांति क्या है? उसका जो अनुभव करना है उसकी विधि का नाम योग है। योग जो है वो अनुभूति है, एक अनुभूति करने की एक विधि है, एक प्रैक्टिकल मेथड है। ज्ञान उसकी थ्योरी है, योग उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो उस थ्योरी को, उस जो आपने पढ़ा, जो ज्ञान सुना, जो एक सिद्धांतिक रूप से जो आपको मालूम हुआ, नॉलेज हुई, उसका अनुभव करना। शांति, शांति क्या चीज है? शांति तो एक अनुभव विशेष का नाम है। और अगर हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी एक विशेष तरफ अटेंशन देकर जो हमारा स्वरूप है उसको हमने समझना पड़ेगा। तो इसलिए अनुभूति करने के लिए, क्योंकि एक बात तो मैंने ये कही कि योग आत्मिक स्मृति या सोल कॉन्शियसनेस है परमात्मा की। दूसरी बात ये कि वो स्मृति का मतलब याद, परमात्मा की भी याद, आत्मा का भी अपने स्वरूप की याद। दूसरी बात संबंध, और तीसरी बात जो विशेष जिस पर मैं जोर दे रहा हूं बार बार, वो आपको बताई। तो आप देखेंगे कि अगर हमारा कहा गया है कि योग एक स्थिति विशेष का नाम है, देह अभिमानी की स्थिति अलग होती है। हम क्यों योग में टिकना चाहते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति देह अभिमानी है, हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, वैसी स्थिति। इसका मतलब यह है, अगर योग याद का नाम है या योग संबंध का नाम है, तो याद और संबंध से हम एक विशेष स्थिति में टिकना चाहते हैं। योगी की स्थिति ही लोगों से अलग होती है, भोगी की स्थिति अलग होती है, योगी की स्थिति अलग होती है। योग युक्त स्थिति, बड़ी आनंदमय, प्रेममय, शांतमय, शक्तिमय, उस स्थिति का नाम योग है। उसमें टिक जाना, उस स्थिति, और वो स्थिति होती है स्मृति से। इसलिए हमने पहले स्मृति की बात कही, और वो स्मृति किस चीज की? संबंध की और स्वरूप की, वो हमने बताया। फिर वो स्थिति जो है, उस स्थिति में टिकने के लिए और उसके अनुभूति के लिए मैंने कहा कि अटेंशन की जरूरत है। वो स्थिति अटेंशन के बिना नहीं हो सकती। तो पहली चीज ये कि योग स्मृति का नाम है, दूसरी चीज ये कि योग संबंध का नाम है, तीसरी चीज ये कि योग में अटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, बिना अटेंशन के नहीं होगा। तो फिर आप देखेंगे कि जब हमारे आत्मिक स्मृति भी होगी, शिव बाबा से हमारा संबंध भी होगा, और हम अटेंशन भी दिए हुए होंगे, तो फिर क्या उसका परिणाम होगा? वो जो हमारा अनुभव होगा, वो जो हमारी स्मृति होगी। गीता में भी एंड में जब अर्जुन से पूछा गया कि भाई सारी गीता तुमने सुनी, और उस सारी गीता सुनने का परिणाम क्या हुआ, फल क्या हुआ? तो एक तो उसने कहा नष्ट हुआ, दूसरा उसने कहा स्मृति लब्धा। तो स्मृति जो हमने बात की वो आ गई, और नष्टो मोहा, उससे उसका अटेंशन सब तरफ से हटके, क्योंकि पहले मोह से अटेंशन उधर जाता है व्यक्ति का, देहधारियों की तरफ, और अब देहधारियों से हटके उस भगवान की तरफ, गीता के भगवान की तरफ। फिर उसके साथ उसने कहा गत संदेह, अब मेरा संदेह कोई नहीं रहा, मेरे सब संशय नष्ट हो गए, सब निवारण हो गए, अब किसी बात का मेरा प्रश्न ऐसा नहीं जिसके समाधान की आवश्यकता हो, जो मैंने जानना था मेरा मन उस बारे में सेटिस्फाइड हो गया। फिर गत संदेहा के बाद उसने और क्या कहा कि करिष्य से वचनम तव, अब जैसे आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, सरेंडर कर दिया अपने आप को। क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपको यह मालूम हो गया कि शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, उन्हीं से मेरे सब संबंध हैं, उन्हीं से मुझे ये सब प्राप्ति होगी जिसके लिए मैं दौड़ धूप कर रहा हूं, और यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो फिर आप क्या करेंगे कि हम तो भटक गए थे, अपने आप को भी नहीं जानते थे, क्या करना है क्या नहीं करना वो भी नहीं हमें मालूम था, बाबा ने अब हमें अपने स्वरूप का भी ज्ञान दिया। तो जब ऐसा कोई हमें मिल जाता है जिसका नाम हम परमपिता परमात्मा रखते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि अब जैसे हमें चलाएंगे, जैसे बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो आप आज्ञा करेंगे, जो आप श्रीमत हमें देंगे, हम उसके अनुसार चलेंगे, उसको हम कहते हैं हम समर्पण होते हैं। ये तो आप समर्पण की एक समझिए कि सेरेमनीज हो रही हैं, लेकिन ये तो एक मन का भाव है समर्पण, विशेष रूप से कि हमारा और कोई है ही नहीं, हमारा एक बल, एक सहारा है, उस एक के चलाए पर हम चल रहे हैं, हम तो निमित्त हैं, जब उसी से हमारे सब संबंध हैं, बाकी सब देहधारी हैं, उनसे हमारा एक ही संबंध है कि हम सब भाई भाई हैं, तो फिर हम उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। तो योग का जो एक परिणाम या एक फल या ये योग का जो एक एलिमेंट है, जितना डीप योग आप अनुभव करना चाहते हैं, अगर समर्पण भाव उतना नहीं होगा, कहीं देहधारियों में राग झूठी होगी, थोड़ा बहुत लगाव होगा, कोई ना कोई आकर्षण होगा, तो वो जो योग का हम जो मैंने पहले बताया अटेंशन या स्मृति या संबंध, वो इनके साथ साथ ये जब तक हमारा डीप नहीं होगा तो योग का अनुभव डीप नहीं होगा। क्योंकि योग है लगन, लगन में मगन होना योग है। जैसे बाबा ने कहा स्मृति में स्थित होना योग है, योग आत्मिक स्मृति का नाम है, सोल कॉन्शियसनेस का नाम है, फिर कहा योग संबंध का नाम है, फिर ये कहा योग में परमात्मा पर मन एकाग्र करना पड़ता है, अटेंशन की जरूरत है, और फिर ये कि योग लगन में मगन होने का नाम है। तो संबंध की भी जब हम बात करते हैं, संबंध भी स्नेह से होता है, नहीं तो हम किसी से क्या कहते हैं, अगर कोई हमसे संबंध निभाता नहीं, स्नेह नहीं करता, तो हम कहते हैं आज से तुम्हारा हमारा कोई कनेक्शन नहीं। नहीं, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, हमारा इतना गहरा संबंध है, ये तुम क्या कह रहे हो। हम कहते हैं हमने सब देख लिया तुम्हारे हमारे से ऐसे, तुम सेल्फिश आदमी हो, कोई स्नेह नहीं तुम्हारा हमारे से, झूठ बात है, आज से हमारा कोई संबंध नहीं। है संबंध देह के नाते से, लेकिन एक प्रेम ना होने से हम ये जजमेंट दे देते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं। इसका मतलब यह है कि वो संबंध संबंध नहीं जिसमें स्नेह नहीं, वो तो एक नाम मात्र चीज होगी। तो जब हम कहते हैं कि शिव बाबा से हमारे सब संबंध हैं, उसमें सबसे फोरमोस्ट, सबसे जो अग्रगणी चीज है, जो मुख्य चीज है, वो है प्रेम संबंध, जिसको कई दफा कई मुरलियों में बाबा ने कहा है दिल, जो दिल देते हैं दिस दिलबर को, जो दिल तख्त पर बाबा को तख्त नशीन करते हैं, बाबा के दिल तख्त पर भी वही तख्त नशीन है, भविष्य में भी वही तख्त नशीन होने वाले। तो इसलिए हम बाबा को दिल पर, या ये हमारे समझिए कि दिल तख्त पर बाबा को हम बिठाते हैं, बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा, अनेक जो हम बातें कहते हैं, उसका मेन भाव हमारा यही हम प्रकट करना चाहते हैं कि बाबा से हमारा अटूट स्नेह है, घनिष्ठ स्नेह है। इससे ज्यादा अधिक मित्रता, अधिक घनिष्ठता किसी देहधारी से हमारी नहीं है। जो हमें अपना कहना हो, जो हमको प्राप्त करना हो, जिससे हमारा सर्वस्व जीवन का लगाव हो, वो एक ही है, जो शिव बाबा है। यही हमारी एक पवित्रता का एक यही उत्तम निशानी है, पवित्रता इसी में समाई हुई। सब संग तोड़ एक संग जोड़ की भी जो बात हम कहते हैं, वो इस संबंध को ये है निभाने की। तो केवल संबंध जानने की बात नहीं है कि आत्मा का शिव बाबा से क्या संबंध है, और उस संबंध में सिर्फ टिकने की बात नहीं है, उस संबंध को निभाना, व्यवहार में निभाना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका वो पिता है, तो बच्चे को ये मालूम है कि ये मेरा पिता है, लेकिन उस संबंध को निभाता नहीं। मतलब ये कि पिता अगर उसको कोई आज्ञा करता है मानता नहीं, पिता उसको चाहता है कि बच्चा मेरा अच्छा हो वैसा वो करता नहीं, पिता को सम्मान देना उसका कर्तव्य है वो उसको करता नहीं। इसी प्रकार से पिता उसको स्नेह, पिता को जैसा स्नेह देना चाहिए वो देता नहीं। तो ये संबंध निभा नहीं रहे, संबंध है बेशक, उसने भी हिसाब किताब से जन्म ले लिया और एक ही घर में रहते हैं, पिता पुत्र का नाता तो है। कोई पूछता है आपका फादर कौन है, वो कहता ही है, उससे कोई पूछता है कि ये आपका कौन है, कहता है जी मेरा बेटा है। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, अगर उसमें स्नेह नहीं है तो वो संबंध बेकार है। तो संबंध का मतलब होता है संबंध निभाना। अगर जब हमें मालूम पड़ गया कि शिव बाबा हमारा मात पिता शिक्षक सदगुरु सर्वस्व है, जब सर्वस्व है तो उसको निभाना भी जानो। कि पिता को साथ संबंध कैसे निभाया जाता है, माता के साथ कैसे निभाया जाता है, सखा के साथ कैसे निभाया जाता है, टीचर के साथ कैसे, सदगुरु के साथ कैसे, ऐसे सर्व संबंध हमें उसको निभाने कैसे हैं, ये योग इससे आधारित है। यही इसलिए योग जो दूसरे लोग हैं वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं ये बातें। यही बातें जब बाप आते हैं और प्रैक्टिकली हमारे सामने ये सारे कर्तव्य उनके चलते हैं, हमारे ये सब संबंध व्यवहार में आते हैं उनसे, तब हम उसका अनुभव करते हैं। तो इसलिए योग की जब मैंने बात कही कि योग संबंध है, योग माना संबंध को जोड़ना, बाबा कहते हैं योग माना जोड़, जोड़ क्या, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, किस तरह से, बुद्धि से या मन से, ये हम योग की व्याख्या देते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो उसमें लव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे फिर संबंध स्पष्ट होता है, उसके बिना संबंध का कोई टिकाव नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं, और फिर व्यवहार में भी उस संबंध को निभाना, तब है उसका योगी का योगी जीवन सफल।
ये एक विशेष बात है। तो योग के ये एक जो हम डीप अनुभव करना चाहते हैं, इनमें से हर एक चीज जब डीप होगी तब आप देखेंगे कि हमारा योग भी डीप होगा। तो सरेंडर की बात भी मैंने कही कि जब हमारे सब संबंध उसके साथ हैं, जब सचमुच हमने समझ लिया कि हम गलत रास्ते पर थे, भटक गए थे, दलदल में फंसे हुए थे, रावण की जंजीरों में जकड़े हुए थे, बाबा आपने कमाल कर दिया, आपने हमें निकाल दिया, हम तो कहां से कहां पड़े थे, 63 जन्म से गिरते ही चले आ रहे थे, सचमुच बाबा आपने हमें क्या देखा जो हमें चुन लिया, हमारी बुद्धि में इतना उत्तम ज्ञान दे दिया, इतना अनमोल रतन हमें दे दिया, हमारी झोली भर दी और जन्म जन्मांतर हमारा सफल कर दिया, बाबा हम अब आपके हो चुके, इसी का नाम है सरेंडर करना, हम उसके हो चुके। इसको कहो सगाई हो गई, हम उसके हो गए, वो हमारा हो गया, किसी भी नाम से इसको कह दो, फिर भी विविध रूप से हम इसको कहते हैं। ये जितना भाव हमारा स्ट्रांग होगा, जितना डीप होगा, जैसे बच्चा छोटे बच्चे को मां लिए हुए होती है, यहां पर दूसरा कोई उसको ऐसे वेलकम करता है कि मेरे पास आ जाओ, तो जितना छोटा होता है उसकी अटैचमेंट उससे इतनी होती है, मां से रोने लग जाता है, जाता नहीं किसी के साथ भी, अपनी मां के साथ ही रहना चाहता है। तो हमारी जो शिव बाबा के साथ बाकी सब अटैचमेंट हटा के उधर से डिटैच होके ये अटैचमेंट होनी हमारी ऐसी चाहिए कि हम सब चीज छोड़ सकते हैं, सारी दुनिया एक तरफ, ये बाबा हमारा एक तरफ, हम इसके लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मैं वारी जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, मैं न्यौछावर जाऊं, वी कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। उसके लिए जो हमको करने की आवश्यकता है, जो बाबा हमारा कहता है, जिस तरह से वो कहते हैं भाई चांद भी ला दूंगा तुम्हारे लिए, अगर चांद कहोगे मांगोगे तो चांद भी ला दूंगा, तो बाबा हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या हमसे चाहता है, जो हमें बाबा मुरलियों में बताते हैं, हमसे क्या बाबा की एक्सपेक्टेशंस या आशय हैं। बाबा प्यारे बाबा, सिकिलते बाबा, लाडले बाबा, हम वो सब करके दिखाएंगे। अब हम आपके हो चुके, आपके बिना हमारे जीवन में, हमारी स्मृति में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में है ही कुछ नहीं। तो जब है ही वो, तो आप जो कहेंगे हम कर रहेंगे, चाहे हमें मिटना पड़े, खून का आखिरी कतरा बहाना पड़े, हम उसके लिए सब तरह से तैयार हैं। ये जो भाव है इसका नाम समर्पण में आता है। ये जब जितना हमारा गहरा होगा, इसको जितना हमारी लगन होगी, जिसको हम एक शब्द में कहते हैं, उतना हम मगन हो सकेंगे। तो लगन की जितनी इंटेंसिटी होगी, जितना उसकी डिग्री होगी, मगन की डिग्री तदनुसार होगी। और ये है लगन, इतनी लगन हो जाना कि मन में दूसरा स्थान ही कोई नहीं किसको हम रखें। भक्त कवियों को भी आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा है कि अखियां तो झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, इस तरह से सब लोग लिखते हैं कि ये आंखें मेरी बंद क्यों हो जाती हैं, मैं तो उसको देखता ही रहूं, रात भी जागता हूं, दिन भी जागता हूं उस प्रीतम के लिए। ऐसे ऐसे प्रेम से गीत उन्होंने भी गा रखे, कृष्ण के लिए, गोपियों का कितना कृष्ण से प्यार था। भागवत में आप पढ़ें तो बड़े ऐसे सुंदर वर्णन आते हैं, मीरा के गीत आप पढ़ें, लेकिन पता भी नहीं उनको, ज्ञान भी नहीं पूरा। और हमसे तो प्रैक्टिकली दिन रात बाबा के साथ हमारा पाठ चल रहा है, जो हम प्रैक्टिकली अनुभवी हैं। उस सब अनुभवी होने के बाद हमारी जो एक समर्पण महता की स्टेज हो, सरेंडर की पूर्ण रूप से, बाबा जो कई दफा कहते हैं कि भाई बुद्धि नहीं दिल, ऐसा नहीं कि बुद्धि का यूज ना करो, बाबा कहते हैं बुद्धि को यूज नहीं करेंगे तो ज्ञान किससे लेंगे, और देंगे ज्ञान किस तरह से, और श्रीमद पर फॉलो कैसे करेंगे। दिमाग को अगर एक तरफ रख देंगे तो फिर तो हमारा काम चलेगा ही नहीं, ये तो एक इस जीवन रूपी रथ का एक पहिया हो जाएगा। लेकिन बाबा का भाव यह है, बुद्धि सरेंडर कर दो, अब बुद्धि में जो मैं भर रहा हूं उसको लो, बाकी सब निकाल दो। ये जो कंकर पत्थर बुद्धि रूपी तिजोड़ी में भर रखे थे, ये समझ करके बहुत बढ़िया बातें हैं, उनको हटाकर अब जो मैं रतन दे रहा हूं वो रतन भरो। लेकिन वो रतन भी भरेंगे तो बुद्धि रूपी कलश में, उसके बिना और कहां भरेंगे। तो बुद्धि को सद्बुद्धि करना, दिव्य बुद्धि करना, डिवाइन इंटेलेक्ट उसको बनाना, ये बाबा का लक्ष्य है। तो कहने का भाव यह है कि इस के साथ साथ वो जो सरेंडर की भावना है वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ आप देखेंगे कि जैसे हमने कहा कि आत्मिक स्मृति, योग का अर्थ पहले पहले हमने बताया सोल कॉन्शियसनेस या गॉड कॉन्शियसनेस, शुरू हमने यहां से किया। तो क्या उसमें है, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु, पहला पहला पार्ट जो हम किसी को पढ़ाते हैं वो यही पढ़ाते हैं, उसको भी पढ़ाते हैं, खुद भी साथ साथ रोज पढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। इसलिए रोज बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भाव, हम भी जो जिज्ञासु आता है हम भी उसको रोज यही कहते हैं देही अभिमानी भाव, फिर रेड लाइट करके उसको उसमें टिकाने की कोशिश करते हैं। शुरू भी इसी से करते हैं, एंड भी इसी से करते हैं। हमारा पढ़ाई शुरू भी यहां से होती है और जब ये पूरी होगी तब होगी पूरी, जब ये इसमें हम पूर्ण प्रवीण हो जाएंगे। ये पहली चीज है। लेकिन आप ये देखेंगे कि सिर्फ इसमें पूरा नहीं है कि मैं आत्मा हूं या ज्योति बिंदु। तो मैं ये कह रहा था कि एक सार है, एक विस्तार है और एक उसका प्रचार या प्रसार है। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है या शिव बाबा जिससे हमने संबंध जोड़ना है उसका जो ज्ञान है, उस सारे ज्ञान का भी सार है। वो सार आप देखेंगे कि सात बातों में है। वो सात बातों में जो हमारा निश्चय होगा, जो उसने कहा कि गत संदेह, अब मेरे सब संदेह मिट गए। जितने जिसके संदेह मिट गए होंगे, यो जिसको बाबा कहते हैं निश्चय आत्मा विजयति, योग माना निश्चय, ये भी हम कहते हैं, योग माना स्मृति, याद की यात्रा, योग माना संबंध, योग माना लगन में मगन, ये सब बातें, योग माना समर्पण में आता, मेरा एक दूसरा ना कोई। और योग का साथ साथ हम ये क्या कहते हैं जो अभी मैंने बताया, निश्चय, निश्चय आत्मा विजयति, अटेंशन भी बताया बीच में। तो अभी ये निश्चय जो है आत्मा के स्वरूप में, जो सारे ज्ञान में निश्चय है, जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान योग परक है। ज्ञान हमें योग की ओर ले जाता है, ज्ञान स्वतः में कुछ नहीं, ज्ञान योग में हमें स्थित करने के लिए सारी बात समझाता है ताकि हम उसमें टिक पाए। तो वो जो ज्ञान है, जो जो उसकी जो सात बातें हैं, जो सार में मैं आपको कह रहा था कि सार विस्तार और प्रचार या प्रसार, वो जो ज्ञान का सार है वो योग में हम तब पूर्ण रूप से स्थित हो सकते हैं जिसमें इन सात बातों में हमारा पक्का निश्चय हो, सुई की नोक के बराबर भी उसमें संशय न हो। वो सात बातें मैं आपको बताता हूं। एक तो मैं कौन हूं, पहली बात जो हमें यहां बताई जाती है, हम दूसरों को भी बताते हैं, मैं कौन हूं। इसमें जरा भी रंच भी हमारा कोई संदेह या शक की बात नहीं कि मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं में कई बातें आ जाती हैं, इसका भी विस्तार है। क्योंकि एक तो मैं कौन हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, अनादि हूं, अविनाशी हूं, ये हमें मालूम हो गया। दूसरा, आप संगम युग में मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूं, पांडव हूं, बाबा ने कितने टाइटल दिए हैं कि आप क्या हो, आप एंजल्स हो, आप भविष्य में होनहार देवी देवता हो आप, ये जो सारी बातें हैं ये भी जरूरी है, इनमें भी निश्चय जरूरी है। वरना कोई कहेगा कि हमें तो ऐसे लक्षण अपने मालूम नहीं पड़ते, तो वो भी स्थित पूरी रीत से नहीं हो सकेगा। तो मैं कौन हूं, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक आप संगम युग में सारा मैं कौन हूं, ये सारा उसका वर्णन है। मैं कौन हूं असलियत के निगाह से, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अनादि और अविनाशी हूं, ये तो ठीक बात है। लेकिन मैं कौन हूं का जो पार्ट है सतयुग के आज से लेकर, कि हम देवी देवता थे, फिर वो द्वापर में चंद्रवंशी बने इस त्रेता युग में, फिर द्वापर में क्या हुआ, फिर कलयुग में क्या हुआ, फिर अभी क्या क्या हो रहा है, ये सारा जो पार्ट है ये कौन है, ये सारा क्या है, ये मैं कौन, ये उसका विस्तार है। सार उसका फिर भी आके यही है कि मैं हूं ज्योति बिंदु, अनादि और अविनाशी। जन्म मैंने भले ही 84 लिए, लेकिन मैं वही ज्योति बिंदु हूं और अनादि और अविनाशी हूं। और अभी जो मेरी स्टेज ऐसी क्यों हुई है उसको स्पष्ट करने के लिए कहा गया। भाई मैं अब योग में बैठूंगा, मैं कहूंगा मैं तो शांत हूं, मैं तो शुद्ध हूं, लेकिन हूं तो नहीं शांत और शुद्ध। अभी किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया था, अब रेड लाइट हो गई, मैं बैठ गया योग में और फिर कहता हूं मैं तो शांत हूं और शुद्ध हूं। क्यों? वास्तव में तो शांत और शुद्ध मेरा स्वरूप है, लेकिन मेरा शांत और शुद्ध स्वरूप कैसे हटा, उससे मैं जो उत्थान और पतन की सीढ़ी है वो समझने से मालूम होता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप यही था। लेकिन ये देहाभिमानी बनने से, माया के अधीन होने से मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी। चलो अब मैं फिर अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता हूं, क्योंकि उसी स्मृति से फिर मेरी ऐसी स्थिति होगी। ये हम जो अभ्यास करेंगे, जब तक हमें बुद्धि में ये क्लियर नहीं होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं कहता हूं मैं ज्योति बिंदु हूं और ये मैं तो वास्तव में शुद्ध हूं, मैं तो आदि में देवता था, या बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाओ, क्यों कहते हैं ऐसे भाई असुरों के या आसुरी संस्कारों का गला कट जाएगा, इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि मेरी वो फाउंडेशन स्ट्रांग होगी कि वास्तव में मेरा जो स्वरूप था वो तो शांत और शुद्ध था, पवित्र हूं मैं अपने स्वरूप में। अभी वाला मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी नेचुरल स्टेज नहीं है। लोग तो यही कहते हैं कि भूल करना मनुष्य का स्वधर्म है, टू एर इज ह्यूमन, वो तो ये कहते हैं इंसान है ही गलतियों का पुतला, कोई ऐसा होता ही नहीं जो ना करे। हम कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम पहले परफेक्ट थे, हमारी संपूर्ण स्टेज थी, धीरे धीरे कलाएं हमारी कम हुई और आज हमारी ये कलाएं हम खो बैठे और अब फिर हम वो बनेंगे। अभी की जो आप बात कह रहे हो ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, आदिम स्थिति, ओरिजिनल स्टेज नहीं है। ये सारा समझ में होने से मैं जब आप बैठूंगा योग में तो मैं जब निश्चय करूंगा कि मैं तो शांत हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो अपने आदि स्वरूप में पवित्र हूं, तो मेरे उसके पीछे जो ज्ञान होगा वो मेरे इस भाव को सपोर्ट कर रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी संशय होगा तो मन तो कह रहा है कि मैं शांत और शुद्ध हूं, और बुद्धि उस बात को मान नहीं रही, कहते कौन कहता है तुम शांत और शुद्ध हो, तुम तो झगड़ालू आदमी हो। तो वो मन और बुद्धि आपस में लड़ेंगे तो वो योग तो टिकेगा नहीं। इसलिए ये सारा मैं कौन हूं, ये अब मैं मेरा जो आत्मिक स्वरूप है उसका भी परिचय, उससे मतलब है, और जो ये 84 जन्म का सारा पाठ का भी जो सार है, ये सारा मैं कौन हूं की ही विस्तार है। लेकिन जब हम बैठते हैं योग में, उस विस्तार को भूल के बैठते सार में है, लेकिन उसके पीछे हमारा ये विस्तार का अनुभव हो और उसका निश्चय हो, इसको मैं कहता हूं निश्चयात्मक बुद्धि। योग माना निश्चयात्मक बुद्धि। एक तो ये कि मैं कौन, दूसरा ये कि किसकी संतान। जब देह की बात मैंने छोड़ दी, मेरा बायोडेटा जो शरीर के नाते से मेरा परिचय था वो सब समाप्त हो गया एक धक से, तो मैं कौन हूं? अब मेरा नया बायोडेटा, नया मेरा जीवन परिचय होगा, मेरी एक जो परिचय होगा वो अलग से फिर से नया एक हो गया, तो उसमें मेरी जो पेरेंटहुड है, मेरी जो मैं किसकी संतान हूं, अब मुझे वो मालूम पड़ा कि मैं शिव बाबा का बच्चा और वास्तव में वही मेरा पिता है आत्मिक नाते से। तो ये जब मुझे पूरी रूप से मालूम होगा तो उसमें निश्चय पूर्ण रूप से होना, तो वो उसका पूरा परिचय शिव बाबा का भी। परिचय का मतलब क्या, उसमें नाम गुण संबंध और कर्तव्य। शिव बाबा का भी जो मैं जिसकी संतान हूं उसके भी ये चीज है, उसका नाम क्या है, बहुत महत्व है उसका नाम क्या है, उसका शिव। शिव का अर्थ क्या है, कल्याणकारी। जब मेरा बाप कल्याणकारी है तो मुझे भी कल्याणकारी बनना है, मैं उसका बच्चा हूं। कल्याणकारी के बच्चे को भी उसके अपने पैतृक स्वरूप या स्वगुण के अनुसार, स्वधर्म के अनुसार अपना उसको भी कल्याण करने वाला ही होना चाहिए। यथा एज द फादर सो द सन, जैसा पिता वैसा बच्चा होना चाहिए, उसके भी गुण कर्म स्वभाव वैसे होने चाहिए। तो नाम गुण कर्म स्वभाव और उसके साथ साथ कर्तव्य, ये शिव बाबा का हमारा पूरा मालूम हो, और उसमें हमारा जितना भी निश्चय होगा, पक्का निश्चय, अटल निश्चय, अटूट निश्चय, कभी भी उससे हम हिल नहीं सकते। जितना हमारा गहरा निश्चय होगा उतनी योग की अनुभूति भी हमें गहरी होगी। तीसरा है संबंध। जैसे मैंने पहले कहा, ज्ञान में जिन बातों को सात रूप को हम समझते हैं, मेरा सबके साथ संबंध क्या है और मेरा शिव बाबा के साथ संबंध क्या है। अब सब संबंध समाप्त हो गए। लोग कहते हैं जी ये पति पत्नी को भाई बहन बनाते हैं, कोई माता किसी की मिलती है, किसी की माता का नाम कुछ है और वो माता जी कहने की बजाय बहन जी, फलानी बहन जी कह रहा है दूसरे को। हम जब पहले पहले यहां आए तो हमने देखा जो मम्मा थी वो अपनी जो माँ है उसको रोचा बहन के नाम से कह रहे थे, और जो रोचा बहन थी वो मम्मा को मम्मा कह रही थी, माँ अपनी बेटी को माँ कह रही थी, और जो बेटी है वो माँ को बेटी कह रही थी। तो क्या है कि आप जो आत्मिक संबंध हमारे सब हो गए तो सारा एक जो हमारा परिचय है वो उस तरह से हो गया, उसके हिसाब से हो गया। बड़ी विचित्र चीज हमने देखी, हमने कहा भाई ये तो अपसाइड डाउन हो गया या डाउन साइड अप हो गया। तो लेकिन वो आत्मा की बात को जब हम समझते हैं तो हम समझते हैं कि उसका भाव उसके पीछे क्या है। तो ये संबंध जब तक ठीक नहीं होंगे ये दुनिया ठीक हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनाओ, कितनी भी कोशिश करो सुखमय संसार नहीं बन सकता अगर संबंध सुखमय ना हो, और संबंध जब तक ठीक ना हो तब तक संबंध सुखमय नहीं बन सकते। और ये सारा ज्ञान जो है वो संबंधों को ही ठीक करने के लिए है, वो वापस मुक्ति धाम में जाके आत्मा का परमात्मा में लीन होने के लिए नहीं है। जैसे सन्यासी कहते हैं भाई न होगा बांस और न बाजे की बंसरी, वो तो समझते हैं चल हम ही खत्म हो जाएंगे तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। वो बजाय रोग को मारने के मरीज को ही ऐसी दवाई देते हैं मरीज ही ना रहे, बजाय इसके कि रोग ना रहे, चलो हम ही जाके लीन हो जाए, वो चीज नहीं। हम उन संबंधों को जिनसे संसार खराब हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई योग में स्थित नहीं हो सकता, योग का गहरा अनुभव नहीं कर सकता जब तक प्रैक्टिकली अपने संबंध नहीं ठीक करेगा। जिस सेंटर पर रहता है, जिन जिज्ञासुओं से काम पड़ता है, जिस अड़ोसी पड़ोसी से उसका व्यवहार होता है, अगर उसके पास उसके संबंध मधुर नहीं है, शिष्ट नहीं है, योग युक्त नहीं है, उनके साथ उसका व्यवहार ठीक हो ही नहीं सकता। और जब तक व्यवहार ठीक ना हो उसका आचरण श्रेष्ठ कैसे हुआ। अब व्यवहार और आचार तो आपस में इकट्ठे कनेक्टेड है, और उन सबकी श्रेष्ठता जब तक ना हो वो योगी ही कैसे हुआ। तो इसलिए इस बात को महत्व देने की जरूरत है कि संबंध कितने जरूरी है। बाप से भी हमें तभी प्राप्ति होगी, बहनों भाइयों से भी तभी प्राप्ति होगी, सबका आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा। हम पास विद ऑनर्स ही तभी होंगे जब हमारे संबंध ठीक होंगे। आप पास विद ऑनर्स होने के लिए कुछ भी कर लीजिए, हो ही नहीं सकते जब तक सबको संतुष्ट नहीं किया, और संतुष्ट कर ही नहीं सकते जब तक आपके संबंध ठीक ना हो, और संबंध ठीक हो ही नहीं सकते जब सब संबंध बाबा के साथ लगाकर सबको आत्मिक दृष्टि के संबंध से हम देखे नहीं। इट इज सो इंपॉर्टेंट। हम कोशिश करते रहे, अच्छा ठीक है आज हम 6 घंटे योग में बैठेंगे, 3 घंटे के बजाय भी 6 घंटे बैठेंगे, बैठ लीजिए, लेकिन अगर संबंध ठीक नहीं होगे, अंदर से वो योग का जो एक समझो लहर बने, फाउंडेशन उसकी है ही नहीं, तो योग कैसे टिकेगा, कैसे टिक नहीं सकता। तो संबंधों पर अटेंशन देने की जरूरत है। फिर कहां से आया जो मैं कौन हूं, कहां किसकी संतान हूं, उसके साथ मेरे संबंध क्या है, फिर मैं कहां से आया हूं, ये जब तक हमें मालूम ना हो तो हमारा स्वीट होम, हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और योग वाले कहते हैं कि योग माना धारणा, ध्यान और समाधि, यानी मन को एकाग्र करना, एक चित्त की एकाग्रता, उस एकाग्रता से वैसी आपकी स्थिति होगी। और कोई भी पिक्चर विदाउट बैकग्राउंड नहीं होती। अब मैं यहां बैठा हूं, आप सिर्फ मुझे देखना चाहें ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ माइक भी आपको दिखाई देगा, कुर्सी भी दिखाई देगी, पीछे जो कुछ है वो भी दिखाई देगा। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है कि देयर इज नो पिक्चर विदाउट ए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बिना कोई पिक्चर नहीं होती। आप परमात्मा को याद करना चाहते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद नहीं कर सकते। शिव बाबा परम धाम में रहता है, वो जो आसपास लाइट है परम धाम की, रेड लाइट, वो आपके सामने जरूर आएगी। आप करके देखिए, एक बिंदु की याद करके देखिए, आपके मन में स्वयं ही प्रश्न उठेगा कि बिंदु के आसपास क्या है। या तो आपके सांस आकाश तत्व दिखाई देगा नीले नीले जैसा, और या आप किसी भी मनुष्य के बारे में सोचिए, जिस सेंटर से आप आए हैं वहां के सेंटर की किसी बहन के बारे में सोचिए, या तो आपको बेडरूम या किचन या क्लासरूम या हॉल कुछ ना कुछ याद आएगा। वो अकेली बहन ही याद दिखाई दे और आसपास कुछ ना दिखाई दे, ये हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो मैं कहां से आया हूं और शिव बाबा भी कहां का रहने वाला है, मेरा पिता का देश कौन सा है, हमारा स्वीट होम कौन सा है, ये जब तक परिचय पूरा ना हो और उसमें भी हमारा निश्चय पूरा ना हो, तब तक भी योग में हमारी स्थिति नहीं हो सकती, योग की गहराई नहीं हो सकती। योग में जब हम गहराई चाहते हैं, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि भाई इधरों पुटना उधर लाना, इधर से मन उखाड़ना और उधर को जोड़ना, तो हम जब यहां से मन को सब तरफ से हटाएंगे तो जोड़ेंगे कहां। अगर हम पांव उठाएंगे चलना चाहते हैं, इधर से पांव उठाएं और दूसरी जगह पांव रखने की ना हो तो पांव आगे हम बढ़ेंगे कैसे। तो इधर से सब तरफ से मन को हटाएंगे, लगाएंगे कहां, लगाने के स्थान के बिना हटाएंगे कैसे, आप बताइए, हो ही नहीं सकता। हटाने के लिए कहीं लगाने की जगह जरूर होनी चाहिए। ये सारे संसार से हम मन को हटा ले, हटा के कहां करें। तो वो शिव बाबा का जो परम धाम है, जहां लाइट और लाइट ही लाइट है और शांति शांत है, जहां लिहाज नहीं करोगे। फिर बाबा मुस्कुराते भी थे कि दाढ़ी तो मेरी है नहीं, लेकिन बाबा कहते थे दाढ़ी तो नहीं है, लेकिन कहने में तो ऐसे ही आता है कि बच्चे बाप की दाढ़ी का लिहाज नहीं करोगे, क्या इस एक जन्म के अंतिम समय के भी अंतिम समय के लिए भी पवित्र नहीं बन सकते। इस एक जन्म के अंतिम समय की अंतिम घड़ियों के लिए, ये जो अनमोल समय है, बाप से मिलन मनाने का जो समय है, आत्मा परमात्मा का मिलन जो सर्वश्रेष्ठ मिलन है, इसलिए इसका नाम संगम है। और बाबा कहते सिर्फ संगम नहीं कहो, पुरुषोत्तम संगम युग, और सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग भी नहीं, बाबा इंग्लिश में कहते ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस, ऑस्पिशियस यानी ये शुद्ध है, ये संगम युग सब युगों से महान है, देवताओं के युग से, गोल्डन एज से भी सारा, ये डायमंड एज है संगम युग जो है। तो इस समय के महत्व को जब तक नहीं समझोगे, इसमें हमारा हर एक क्षण कितना वैल्यूएबल है, उससे हमने 63 जन्मों के विकर्म को दग करके और महान से महान बनना है, उत्तम परम श्रेष्ठ स्टेज को प्राप्त करना है, और जितना टाइम हमने गंवा दिया है, टाइम ही तो पुरुषार्थ है, अगर हमारा टाइम वेस्ट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, तो हमारा योग लगेगा कैसे, वी विल बी नॉन सीरियस, हमारे वो अपने मन में जो लगन कम हो जाएगी, हमारे योग के प्रति कोई सीरियसनेस तो रहेगी नहीं, अलबेलापन आ जाएगा। और बाबा की अव्यक्त मूल्यां आप पढ़िए, कितनी मूल्यां अलबेलेपन के बारे में, हमारा पुरुषार्थ चलते चलते ढीला हो जाता है। ढीला क्यों हो जाता है, उसका एक कारण ये होता है कि समय का ध्यान नहीं होता, और ये विनाश सामने खड़ा है, हर मूल्य में बाबा के आता है, मौत सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, ये संगम योग भूल जाने से ये सब भूल जाता है, और ये सब भूलने से हम मनाना, गाना, हंसना, बैलना, बातचीत करना वो ठीक है सब, लेकिन उसके पीछे योग जो रहना चाहिए साथ साथ वो योग नहीं रहता। फिर हम अंतर मुक्ता से बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, फिर हम कर्मातीत अवस्था से रास विलास हास विलास में आ जाते हैं, में बन सकते हैं, पूछते रहते हैं हम, और बनने के लिए अगर हम टाइम गंवा देते हैं देन वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो बाबा हमेशा मम्मा मुरली चलाया करती थी कि समय क्या हमें कह रहा है, कि जब तक हम समय के वर्तमान समय कौन सा है, कौन सा है का मतलब यह है कि हमने ये तो समझ लिया कि संगम है, लेकिन ये कितना अनमोल है, कितना महत्वपूर्ण है, ये अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, शिव बाबा के साथ पाठ बजाने के लिए, और जन्म जन्मांतर का भविष्य बनाने के लिए, अपने आप को परिवर्तित करके संपूर्णता पर पहुंचने के लिए कितना महत्वपूर्ण, अनंत महत्वपूर्ण समय है, इसका एक एक क्षण कितना अनमोल है, या क्षणांश भी कितना अनमोल है, स्प्लिट सेकंड भी, ये जब तक हम समझेंगे नहीं तो अलबेलापन, आलस इत्यादि जो बातें कही गई हैं, जो हमारे मन में आएंगी वो हमारे योग को डीप होने नहीं देंगे, अगर हम निरंतर नहीं होने देंगे, एक रस अवस्था नहीं होने देंगे, योग की स्थिति में स्थित नहीं होने देंगे, जो योगी जीवन है वो नहीं होने देंगे, उसमें बीच में दूसरे दूसरे गैप्स आते रहेंगे, वो पूरा एक सिरे से योग चला चले, एक बहुत समय से हमारा निरंतर योग की स्थिति ठीक चली चले, ऐसे नहीं चलेगी, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, चेंज होती रहेगी, वो जिसको कहते हैं लगातार, भाई योग का मतलब है लगातार, यानी तार लगाओ शिव बाबा से लगातार, तो वो भी लगातार, और ये लगातार भी हो, कांस्टेंट भी हो, तो तार भी लगी रहे और लगातार भी लगी रहे, ये योग नहीं हो पाएगा जब तक के विशेष रूप से हमें ये समय का पूर्ण रूप से नहीं मालूम अटेंशन। और कोई नहीं हम कह सकते कि किसका शरीर कब छूटने वाला है, उसका हिसाब किताब इस टोले से कब समाप्त होने वाला है, कईयों को हमने देखा है आज तबीयत ठीक है, कल मालूम होता है इसको तो कैंसर की बीमारी है, आज ये ठीक है कल देखते हैं मालूम पड़ता है इसका एक्सीडेंट हो गया, आज ये ठीक है अब ये इसके बाद इसको ऐसी तकलीफ हो गई कुछ करने जैसा ही नहीं रहा, उसकी स्मृति लोप हो गई, कुछ भी हो गया, एनीथिंग कैन हैपन। हम ये नहीं कह सकते कि अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो हम हमारी युवा अवस्था है, कोई हमें शक्तियां शरीर में सब सुरक्षित हैं, हमारी इंद्रियां अभी कार्य करने में कुशल हैं, और अभी हमारा मस्तिष्क ठीक काम करता है, हम हृष्ट पुष्ट हैं, शारीरिक शक्तियों का अभाव नहीं है, इत्यादि इत्यादि देखने में ऐसा लगेगा कई दफा कि देर इज नो प्रॉब्लम, कोई सोचने की जरूरत नहीं, बट एनीथिंग मे हैपन, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, अगर हम ये सोच के चले कि समय बहुत कम है, कितना भी समय हो समय बहुत कम है, उस थोड़े से समय में हमने अपनी याद की यात्रा को पूरा करके वहां पहुंचना है, वो जो हमारी स्टेज है, कौन सी हमारी स्टेज है, वो अगर हमारे सामने लगे कि मैं वो लाइट हूं, मैं वो माइट हूं, मैं वो ज्वाला रूप हूं, मैं सारे विश्व को लाइट और माइट देने वाली वो ज्योति हूं, जागती ज्योति हूं, वो मेरा शुद्ध और पवित्र स्तूप है, मैं संपूर्णता को प्राप्त करने वाली वो मेरी शक्ति हूं, शिव शक्ति हूं, वो जब मेरा स्वरूप मेरे सामने स्पष्ट रहेगा, मेरे नेत्रों से ओझल नहीं होगा, तो समय कितना पड़ा है, जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे मन में दबे हुए पड़े हैं, जो छिपे छिपे से पड़े हैं, समय आने पर प्रकट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जो मालूम पड़ता है कि हमें अभी अपूर्णता है, अभाव है, अभी कमियां हैं जो ठीक होने जैसी हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म कांटे मामूली मामूली जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते वो अभी हैं, उनको निकालने का है, वो मालूम पड़ता है जब वैसी परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति ठीक चल रहा होता है जब कोई उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाता है कि इसका तो फलां व्यक्ति से अटैचमेंट है, इसके तो उससे संबंध ठीक नहीं है, तो उस वक्त उसको गुस्सा आता है, रोना आता है कि ये मेरे चरित्र पर मेरे जीवन पर आघात है और मेरी यही तो पूंजी है, ये तो लूटना चाहते हैं उस पूंजी को, उस वक्त मनुष्य को रोना आता है और उस वक्त मनुष्य को दुख होता है, उस वक्त क्रोध आता है जब कोई हमें अपमानित करता है, हम पर दोष लगाता है, तो मालूम पड़ता है कि अभी हमें अपने हमारे मन में सहनशीलता की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की कमी है, हम कौन है, किसकी संतान है, सत्य स्पष्ट होगा, प्रकट होगा, हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हमारा स्वरूप ऐसा है, तो हमें घबराने की क्या जरूरत है, और दूसरे के प्रति हमें ये घृणा करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन उस टाइम घृणा द्वेष दूसरे के प्रति एक कई भाव हमारे आ जाएंगे, जिससे पता लगेगा कि हमारे सूक्ष्म में, हमारे अंतर मन में,
हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन में या अर्ध चेतन में तो कई चीजें छिपी पड़ी हैं जन्म जन्मांतर की। सूक्ष्म सूक्ष्म में माइंड होता है कि इस व्यक्ति ने इसको ज्यादा पूछा, हमें कम पूछा, इसने हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं किया, हमें अपमानित नहीं किया लेकिन सम्मानित भी नहीं किया, हमारे साथ जो उचित था वो इसने नहीं किया, मिसाल के तौर पर। तो इसका मतलब ये हमें मानसार नहीं चाहिए, ये चाहिए तो सही। अगर स्पष्ट रूप से हमने कोई, हम कोई अध्यक्ष बनना नहीं चाहते लेकिन अध्यक्षता नहीं दी, अगर ठीक शिष्टता भी नहीं की, औपचारिक हमारे साथ एक ऑफिशियल व्यवहार भी नहीं किया, कईयों को हमने देखा माइंड होता है कि ये तो कुछ ठीक तरह से इन्होंने हमारा वो किया ही नहीं, क्योंकि चलते चलते हमें अभ्यास हो जाता है कि लोग हमारा स्वागत करें, हमारा सम्मान करें, हमारी महिमा करें, बताएं हमने इस क्या सेवा की इस संस्था में, हम कितने क्या व्यक्ति हैं, हमारा कार्य क्या था, हमने कार्य क्षेत्र क्या था, और हम कितने पुराने हैं, हमने कितने सेंटर खोले, हमने क्या क्या सेवा की, लोग वर्णन करें। जैसे कोई दर्शन आचार्य हो वो बताएंगे हम बड़े आचार्य हैं, विद्वान हैं, इतनी पुस्तकें लिखी, इतने पारितोषक लिए, इतने अवार्ड लिए, ना बताओ एक भी अगर काम कर दो कहते हैं आपने हमारा पूरा परिचय नहीं दिया, माइंड करते हैं। तो अगर ये हमारे मन में, इसका मतलब ये है कि सूक्ष्म सूक्ष्म भाव कई प्रकार के पड़े हैं, और वो सब दग्ध कैसे होंगे जब तक योग की अग्नि तपेगी नहीं और ऐसी भट्टी नहीं तपेगी जिससे वो सब पिघल के बाहर निकल जाए, समाप्त हो जाए, एक प्रकार से दग्ध हो जाए, उसका बीज भी ना रहे, फिर वो निकले भी ना, यहां तक कि हमें मालूम भी ना पड़े कि वो कैसा हमारा पहला जीवन था, कभी ऐसे हमारे में संस्कार हुआ भी करते थे। तो उस स्टेज के लिए ये समय का भी हमें ध्यान देना, समय का कि अभाव है, ये जरूरी है। और फिर मुझे करना क्या है, ये सारी जो कर्मों की गति है जो श्रीमत हमें मिलती है वो मुझे करना क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे पिता का परिचय क्या है, इत्यादि जो मैंने बताया, समय, और फिर साथ साथ मुझे करना क्या है। ये जो सारे हमारी मर्यादाएं, हमारे नियम, हमें अब जो कर्मों के सिद्धांत, फिलॉसफी ऑफ कर्म जो हमें बताई जाती है, तो वो वास्तव में क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा कर्तव्य क्या है और किन चीजों में हमें पढ़ना नहीं, बुद्धि को डालना नहीं या हमें करना नहीं। तो ये कर्म अकर्म विकर्म की गुह गति जिसको हम कहते हैं, सिंपल भाषा में, एक सरल भाषा में हम यही कहेंगे कि मुझे करना क्या है और मुझे क्या नहीं करना है, दोनों चीजें मुझे जानने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भी अगर हमारे सामने नहीं होगा, संपूर्ण हमारा निश्चय नहीं होगा, कोई कहेंगे हम तो उस लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते, हमारे तो संस्कार ठीक नहीं, इत्यादि इत्यादि, हम तो वैसा बन ही नहीं सकते, बाबा कहते हैं नहीं बच्चे तुम बनने वाले हो, बाबा तुम चुन के लाया है और हम उस पर विश्वास नहीं करते, इसमें भी अगर हमारा पूर्ण निश्चय नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। और फिर इसके अलावा जो कर्म की बात है, मैंने बताया कि करना क्या है करना नहीं क्या है, उसमें भी उसका विस्तार है। एक तो पवित्र आहार, बाबा ने उस पर हमें बताया हमारा आहार कैसा हो, कैसे हम बनाएं, याद में रह के बनाएं, सात्विक भोजन किसको कहा जाता है, फिर जब खाएं तो कैसे योग युक्त होके खाएं, फिर जब खाएं तो साक्षी होके खाएं, कोई किसी कर्मेंद्री के वश होकर हम खाना ना खाएं, ब्रह्मा भोजन समझकर, शिव बाबा का दिया हुआ समझकर, औषधि समझकर या प्रसाद समझकर, ये हमारे शरीर को स्थिर रखना है, ट्रस्टी होकर, कोई एक स्वाद के वश ना होकर कैसे हम खाएं, हम दृष्टि कैसे डालें उसके ऊपर, ये सारा आहार की एक लंबी समझिए कि बाबा ने हमें समझाया है क्या करें कैसे ना करें, क्या ना करें, कैसे पहले बाबा के कमरे में ले जाकर थाली में हम उसको भोग लगाएं, ये सारी मर्यादाएं जिसको हम कहते हैं क्या करें क्या ना करें। किसी को अच्छी चीज हुई, किसी ने और डाल दी, तीसरी दफा दे दी, चौथी दफा दे दी, और हमने समझा ये तो अच्छी है, बाद में चाहे गोलियां खाते रहे पाचन शक्ति के लिए, वो पहले हम ले लेंगे, तो ये योगी लाइक नहीं है, योग में कमी आएगी, योग गहरा अनुभव नहीं होगा। दूसरा पवित्र विचार, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसा मत सोचो किसी के बारे में, उसके अवगुण मत देखो और उसके बारे में ऐसा उल्टा मत सोचो, शुभ सोचो, शुभ भावना, शुभ कामना इत्यादि जो बातें हैं ये सब शुभ विचार में आ जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना में आ जाती है, किसी के लिए नेगेटिव ना सोच के शुभ सोचना हमेशा। तो पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र व्यवहार, और फिर उसके साथ पवित्र आचार यानी करेक्टर, हमारा क्या हो,
जिसको पवित्रता हम कहते हैं, हमारा मूल है। और पवित्र समाचार, कोई हमें उल्टी सीधी बातें बताता है, हियर नो इविल, बाबा कहते हैं टाइम खराब मत करो, अपना भी दूसरे का भी। भाई हमें किस लिए सुनाते हो? कोई हमसे हो सकती हो सेवा वो तो बताओ, तब तो सुनने की कोई आवश्यकता है, नहीं तो बड़े बैठे हैं, जाके उनको बताओ जिनका काम है। तो कई लोग जो झाड़मुई झुंगमुई करते हैं, जिसको बाबा इस शब्दों में कहते हैं, हम उसमें अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो ये भी बाबा का बताया हुआ कि भाई क्या नहीं करने का है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज नॉनसेंस थिंग्स। अभी समय कहां पड़ा है? तो वो सुनेंगे कचरा एक पहले निकाल नहीं रहे, फिर हम अपने मन को डस्टबिन बना के, स्पिट पैन बना के दूसरों का फिर कचरा अपने मुंह में डालते रहे। वाई वाई शुड वी हैव दिस वेस्टेज? क्या जरूरत है इस कचरे को रखने की? फिर पवित्र प्रसार, फैलाव भी हमने किस चीज का करना है, बातें कहनी भी किसको किस तरह की है, दूसरों से बातें ही ऐसी करो जिससे उसकी भी अवस्था बढ़े, आपकी भी बढ़े। ना उल्टी बातें सुनो, टॉक नो इविल भी बाबा ने कहा हुआ है, सिर्फ हियर नो इविल नहीं, टॉक नो इविल, दूसरों से व्यर्थ की बातें करो भी मत। और फिर फॉलो किसको करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, में ये भी एक जरूरी बात है कि हमने फॉलो किसको करना है। फॉलो फादर, बाबा ने ये नहीं कहा इस आत्मा को उस आत्मा को, यज्ञ में चाहे विशेष आत्मा भी है उनको फॉलो करो, वो भी उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को सुनाते हैं ना कि हनुमान ने राम की पूजा की, राम ने शिव पर लोटा चढ़ाया रामेश्वर में, तो अरे भाई तुम हनुमान की पूजा कर रहे हो, तुम शिव की क्यों नहीं करते? तो जब सारे ही शिव बाबा से वो चीज ले रहे हैं, एक मिसाल देते हैं ना हम लोग कि एक भक्त गया राजा के पास कुछ कहने के लिए कि इसके पास जाऊंगा तो राजा है आखिर काफी कुछ देगा, तो उससे बैठा वो पूजा कर रहा था, तो उसने कहा भी बैठो जब तक मैं पूजा कर लूं, तो वो राजा कह रहा था भगवान से कि आपने मुझे ये दिया है, आपने ये दिया है, आपने ये दिया है। वो भक्त उठ के चलता बना कि जब इसको ही उससे मिल रहा है तो मैं उसी से क्यों ना लूं, इससे लेने की क्या जरूरत है। तो उसको फॉलो करना, ये इस ज्ञान की विशेषता है, इस इंस्टीट्यूशन की एक ब्यूटी है कि यहां पर किसी देहधारी की पूजा, एक पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं है, एक किसी व्यक्ति को हम नहीं पूजा करते वर्शिप करते, बल्कि जो शिव बाबा ने हमारे सामने एक सैंपल बनाया है, सबसे पहले हम शिव बाबा को सामने रखते हैं फॉलो करने के लिए, फिर शिव बाबा ने जिसको अपने समान बनाया है, बाप और दादा जिनको हम कहते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। उसके अतिरिक्त हम देहधारियों में से ये समझते हैं कि फॉलो करना चाहिए, हमेशा कहते हैं भाई ऊंचा विचार, कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब इससे ज्यादा हाई थिंकिंग क्या हो सकती है? जो सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ एक आत्मा है सारी मनुष्य मात्र में से, तो उससे उसके उसको फॉलो करना, इससे ये तो हाईएस्ट थिंकिंग है, इससे हाई थिंकिंग और क्या हो सकती? तो ये एक हमको रखना पड़ता है सामने, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरों को अगर हम फॉलो करेंगे वो गिरेंगे तो हम भी साथ में गिरेंगे, ये तो गिरने की बात ही नहीं है, संपूर्णता की स्टेज है। तो फॉलो फादर, ये भी एक साथ में रखने की बात है। तो ये जब सात बातें मैंने आपको बताई, इन सात बातों में जब हमारा संपूर्ण निश्चय होगा, ये भी योग की स्टेज की एक फाउंडेशन होगा, एक हमें योग में स्थित करने में मदद करेगा। अगर हम कुछ दूसरी बातें सुनते रहेंगे, कहते रहेंगे, फॉलो किसी और को करेंगे और इत्यादि इत्यादि बातें, तो हमारी योग की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। तो मैंने जो ये कहा कि योग माना स्मृति, थोड़ा हम उसको रिवाइज करते हैं स्पष्ट करने के लिए, कि मैंने कहा योग माना स्मृति, बाबा कहते हैं योग याद की यात्रा, सोल कॉन्शियसनेस गॉड कॉन्शियसनेस। तो स्मृति किस चीज की? उसके लिए हमें ये सारा ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के लिए ये सात बातें हमारे उसमें हों, और फिर उसके आधार पर हमारा शिव बाबा से संबंध सर्व संबंध हो, फिर उसके बाद उसकी अटेंशन हमारी कहां हो, उसके अतिरिक्त हमारे संबंध में हम व्यवहार में उन संबंधों को निभाएं कैसे, संबंध के बारे में ये भी बात मैंने आपको कही, और फिर इस निश्चय के साथ साथ अटेंशन के साथ साथ हमारी समर्पण में रहता कि उसी के साथ एक हमारी प्रीत हो, हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े ना हुए हो, उस एक से ही हम लगन में मगन तब हो सकेंगे जब उस एक के प्रति हमारा समर्पण भाव होगा, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। ये जितने हमारे गहरे होंगे, जितने हमारे ऊंचे होंगे, जितने हमारे श्रेष्ठ होंगे, जितने हमारे स्ट्रांग होंगे, इनकी डिग्री जितनी हाई होगी उतना हमारे योग की समझिए कि गहराई होगी। फिर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इनमें से हम हर एक चीज को देखें कि जब हम योग में बैठते हैं, मेरी स्मृति सिवाय एक बाबा के कोई और तो नहीं, मेरी अटेंशन परमधाम और शिव बाबा के सिवा और तो कहीं नहीं, मेरे संबंध किसी देहधारी से तो नहीं, सब संबंध शिव बाबा से हैं, और ये सारी बातें, ये जब हमारी ठीक होंगी मैंने बताया, तो फिर हम योग में ठीक बैठ सकेंगे। फिर आप देखेंगे कि इन सब चीजों से जो आदमी इनको समझने के बाद भी जब हम वो कर नहीं पाते, तो हमारे ख्याल में तीन चीजें हैं जो हमें इस मार्ग से हटाती। हम सब समझते हैं इन बातों को जो मैंने आपको कही हैं, हमने सिर्फ उनको फिर से अपने सामने रखा है, सारी बातों का एक प्रकार से मंथन करके उसको रिवाइज कर रहे हैं हम, लेकिन बातें तो ये सबको सब मालूम है। उसमें आप देखेंगे कि तीन चीजें हैं जो हमें इससे हटाती हैं। एक तो अट्रैक्शंस, दुनिया में जो आकर्षण है कई प्रकार के, वो हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं, अट्रैक्शंस जिसको हम कहेंगे कि आकर्षण। दूसरा डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस माना डिस्ट्रैक्शंस नहीं, विनाश की बात नहीं कह रहा, जो मन को हटाने वाली चीजें हैं। मन को हटाने वाली चीजें अट्रैक्शंस भी हैं संसार की, और कई डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? जैसे हम सेंटर पर जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनका व्यवहार हमारे सामने ठीक नहीं, हमारे साथ ठीक नहीं, हम कहते हैं छोड़ो जी क्या जाना है सेंटर पर, बाबा तो ठीक हम मानते हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, बातें सारी ज्ञान की ठीक है, लेकिन वहां पर व्यवहार ही ठीक नहीं, तो वो हम क्या जाके वहां सीखेंगे, घर में बैठ के हम योग लगाएंगे, धीरे धीरे योग हमारा ढीला हो जाएगा, और सारा टाइम हमें यही ख्याल आएगा कि वहां पर तो व्यवहार ही ठीक नहीं होता, सेंटर का वातावरण ही ठीक नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, वहां से मन को हटाने वाला एक समझो के फैक्टर है, इसको मैं कहता हूं डिस्ट्रैक्शन। ऐसे कई बातें आएंगी, आप सेवा के क्षेत्र में आएंगे, आपसे कोई सीनियर बहन भाई कुछ ठीक तरह से चाल चलन उनकी नहीं होगी, गुस्सा करते होंगे, या आप पर दबाव डालेंगे, या स्नेह नहीं देंगे आपको, या कोई और बात होगी, तो आप कहेंगे छोड़ो छोड़ो क्या जरूरत है, ये इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ये क्या बने, हम क्या बनेंगे। तो ये डिस्ट्रैक्शंस है, इन ये भी हमें योग से ज्ञान से पीछे हटाते, इनके सामने भी हमने मजबूत होके, जिसको बाबा कहते हैं अंगद होके हम रहेंगे, हम विघ्न विनाशक बनेंगे, तब हम ठीक होंगे। तो ये हमें पीछे हटाने वाली चीजें हैं। एक तो अट्रैक्शन, कोई हमारे डेकोरेशन हो, एक सेंटर पे हमने देखेंगे ये डेकोरेशन है, हम समझेंगे हमारे पास इससे भी ज्यादा डेकोरेशन हो, ताकि हमारा सेंटर उससे भी अच्छा हो, अब हम सजावट के पीछे ही अपनी बुद्धि देने लगे, बजाय इसके कि हमारा सादगी हो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग हो, सेवार्थ जो चीज जरूरी है वो हो, और एक सेंटर ठीक लगे, सुंदर लगे वो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अति में चले जाएं, बुद्धि को इसमें उलझा दें। और ऐसे ही विकर्षण, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो विकर्षण है, वो हटाने वाले। और तीसरे हैं डिस्टॉर्शंस, जो मन को खराब करने वाले, जो बात को बिगाड़ने वाले। बात को बिगाड़ने वाले क्या है? कोई व्यक्ति हमें बात को बिगाड़ कर बताएंगे, उल्टा सुलटा बताएंगे, ज्ञान को भी उल्टा आगे बताएंगे, और जो दूसरों के बारे में हमें समाचार देंगे, ये व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, वो भी डिस्टॉर्ट करके, बात को बिगाड़ के, असली चीज को बिगाड़ के बताएंगे। तो ये तीन चीजें जो हैं हमें योग से खराब करती हैं, जिसको बाबा कहते हैं कुसंग। कुसंग छोड़ो, कुसंग क्या करता है? डिस्टॉर्शन। अरे तुम इसको समझते हो, तुम्हें पता ही नहीं कैसा है, मैं इसके साथ 10 साल रहा हूं, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, जाड़ी काट देगा हमारी योग से भी, ज्ञान से भी जाड़ी काट देगा। दूसरे के बारे में ऐसा दृष्टिकोण बना के और अपना भी जीवन खराब करना, ये है डिस्टॉर्शंस, इस प्रकार की बातों को गलत समझना, ज्ञान की भी बातों को गलत समझना, कई ज्ञान को भी इस तरह से बताएंगे जो उलट करके बता देंगे, बताने के तरीके होते हैं लोगों के। तो ये चीजें, इनसे अगर हम बचेंगे तो हमारा योग जो है वो डीप लगेगा, गहरा योग हम अभ्यास कर सकेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। फिर अब योग की जो विधि है हमारी, विशेष रूप से जब हम योग में बैठें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सार विस्तार और प्रसार या प्रचार, तो योग में भी बैठने का अब हम सार पर आते हैं कि हम कैसे बैठें। ये सारी बातें जो हमने आपको एक्सप्लेन की, अब इनका विस्तार हमारी बुद्धि में है, लेकिन जब हम योग में बैठेंगे तो सार हमारी बुद्धि में होगा, तभी हम बीज रूप अवस्था में स्थित हो सकेंगे। बीज रूप अवस्था, बीज कहते ही उसको है, बीज में सार होता है, सारा वृक्ष तो विस्तार है लेकिन बीज सार है। तो वो जब हम बीज रूप अवस्था में टिकेंगे, तो हम जब बीज को हम बोते हैं तो बीज सार से विस्तार की ओर जाता है, लेकिन जब हम वृक्ष से बीज ले लेते हैं तो फिर वो हम विस्तार को सार में ले लेते हैं। तो अब जब हम योग में बैठेंगे तो सारे 84 जन्म की बात, ये और वो जो विस्तार था वो ना करके अब हम सार में बैठेंगे। सार में किस चीज में बैठेंगे? योग में जब हम बैठते हैं, अगर हम डीप अनुभव करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं एक तो ये कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं एक प्रकाश हूं, मैं अटर्नल हूं, इमॉर्टल हूं, मैं अनादि और अविनाशी हूं, मैं शांत और शुद्ध हूं, मैं परम धाम का वासी हूं। एनफ। संगम युग है, विनाश आने वाला है, सबके साथ मेरा भाई भाई का संबंध है, ये सब बातें, ये विस्तार है, ये हमारे व्यवहार के काम की है। योग में इनकी अभी क्लोज दिस चैप्टर, उस समय किताब के इस चैप्टर को बंद कर दो जो बुद्धि में रखा हुआ है। इस समय इस चीज की आवश्यकता है, हमने इसका अनुभव करना है। मैंने बताया योग माने अनुभूति, रियलाइज करना है सेल्फ, स्थित होना है अपने स्वरूप में। तो जब अपने स्वरूप में स्थित होना है तो जो स्वरूप से संबंधित ज्ञान है, मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं और कहां से आया हूं, ये अपने मन में याद करो, मन को इसमें टिकाओ। और शिव बाबा जो परम धाम में है, परम धाम में शिव बाबा हमारे मन की आंख जो है, हमारे बुद्धि का जो नेत्र है, ज्ञान का जो हमारा चक्षु है, वो शिव बाबा को परम धाम में देखता है। लाइट ही लाइट है, उस लाइट में वो शिव बाबा ज्योति बिंदु है, ज्योति बिंदु के आसपास भी लाइट है। जैसे पिछली भी एक मुरली में बाबा ने बताया कि सूर्य है, सूर्य के आसपास सूर्य की अपनी लाइट होती है, ऐसे ही शिव बाबा है, शिव बाबा ज्योति बिंदु है, बहुत शुद्ध, बहुत एक लाइट स्वरूप, और उस शिव बाबा के आसपास लाइट है। उस लाइट का जो अस्तित्व है वो एक लाइट के धाम में है, आसपास भी लाइट है। मैंने आपको बताया देयर इज नो पिक्चर विदाउट ए बैकग्राउंड, ये पिक्चर भी हो गई, बैकग्राउंड भी हो गया। पिक्चर हो गई शिव बाबा की और बैकग्राउंड हो गया परम धाम का। बस अब मन कहीं ना जाए, वहां मन टिका हुआ हो हमारा, और जो हमारा स्वरूप है उसको भी धीरे धीरे कम करते जाइए, संकल्प कम करते जाइए। एक ही बात अगर हम याद रखें कि मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं शांत हूं, मैं शुद्ध हूं, एनफ। और फिर शिव बाबा हमारे सामने रहे, मैं उसकी संतान हूं। फिर अगर मन कहीं जाने लगता है, शिव बाबा आप शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, एनफ। ये सारा सार है, इस सार में जब आप टिकेंगे और कोई भी संकल्प इसके बाहर नहीं आएगा, तो हो ही नहीं सकता कि बीज रूप अवस्था का अनुभव ना हो, लाइट या माइट का अनुभव ना हो, योग की अग्नि प्रज्वलित ना हो, हम ज्वाला रूप ना हो, या हमारे जो विकर्म है वो दग्ध ना हो। आप अभी जो 10 मिनट 5 मिनट हम रहते हैं वो हम इसी में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। तो आप केवल इन्हीं संकल्पों को सबसे पहले उस परम धाम में जहां लाइट है, जो सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो गोल्डन रेड लाइट होती है, उस लाइट में शिव बाबा को, जिसके आसपास भी लाइट है, वो मन के चक्षु से देखते रहिए, वहां वो ओझल ना हो। और फिर बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, क्योंकि मैंने कहा लगन में मगन होना ही योग है, संबंध को स्थापित करना ही योग है, उस प्रेम से शिव बाबा को याद करते हुए, अपने सामने रखते हुए, प्रेम विभोर होकर, जितना जिसका प्रेम डीप होगा, स्ट्रांग होगा, उतनी उसकी योग की गहराई होगी। तो वो उस प्रेम से शिव बाबा को याद करके, मन में प्रेम विभोर होकर और अपने स्वरूप का मनन करते हुए, धीरे धीरे इन थॉट्स को भी कम करते जाइए। शिव बाबा सामने रहे, मैं लाइट हूं और माइट हूं, इसमें हम टिक जाए, बस और कोई संकल्प हो ही ना। अंत में जाके ये दो ही एक संकल्प रह जाए कि मैं लाइट हूं और माइट हूं, और शिव बाबा हमारे सामने रहे, हमारे मन के नेत्र के सामने, और बाद में ये भी संकल्प न रहे और हम अनुभव स्वरूप हो जाए। वो जो अनुभव स्वरूप की स्टेज होगी, आप देखेंगे कि इतनी स्ट्रांग लाइट और माइट आपको महसूस होगी कि यहां से प्रस्फुटित होके, निकल निकल के, रेडिएट होके, सारे विश्व में एक लाइट जा रही है। जैसे आपने इलस्ट्रेशन ऑफ राजयोग पर देखा होगा कि एक चित्र बना हुआ है, पृथ्वी पर एक बैठा है योगी और लाइट में घिरा हुआ है, सारे चारों तरफ से लाइट है उसके, और लाइट की लहरें उसमें से निकल निकल के सारे विश्व में फैल रही है। वो चित्र अपना सामने कभी आप रखिए कि मैं भी लाइट में ही सराउंडेड हूं, ज्योति बिंदु हूं, लाइट ही लाइट हूं, लाइट और माइट। ओम शांति।